अथ तृतीयम प्रकरणम आत्मज्ञान के अनुभव करके जुगत भी अपने शिष्य को व्यवहार में स्थित देखकर उसके आत्म ज्ञान अनुभव की परीक्षा करने के निमित्त उसकी व्यवहार के विषय स्थिति की निंदा करके आत्म अनुभव आत्मक स्थिति का उपदेश करे हैं के हे शेष अविनाशनम एकम आत्मनम बग्याए तत्वता आत्मगस्या धीरस्या तब अर्थार्जने रति कथम लख्यते। हे शेष अविनाशी कहिए त्रैकाल में सत स्वरूप आत्मा को किसी देश काल में भेद को नहीं प्राप्त होने वाला जानकर यथार्थ रूप से आत्मज्ञानी धैर्यवान जो तू तेस तेरी व्यवहारिक अर्थ के संग्रह करने में प्रीति किस कारण देखने में आवे हैं। विषय के विषय जो प्रीति हुए है तो आत्मा के अज्ञान से हुए है। इस वार्ता का दृष्टांत और युक्ति पूर्वक दिखाए हैं। अहो शिष्य यथा शुक्ते अज्ञानतः रजत बेप्रम्मे लोभा भवति तथा आत्मज्ञानात् विषय ब्रह्म गोचरे प्रीति ही भवति। जिस प्रकार आत्मा के सीपी का ज्ञान न होने से रजत की भ्रांति करके लोभ हुए हैं तिसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से भ्रांति ज्ञान करके प्रतीति होने वाले विषयों में प्रीति हुए हैं। जिनको आत्मज्ञान हुए हैं उन ज्ञानियों की विषयों में कदाप प्रीति नहीं हुए है। ऊपर इस प्रकार कहा है कि विषयों के विषय जो प्रीति हुए है सो ज्ञान करके हुए हैं। अब इस वार्ता का वर्णन करे हैं कि संपूर्ण अध्यास्त को अधिष्ठान भूत जो आत्मा तिसके जानने पर फिर विषयों के विषय प्रीति नहीं हुए हैं। सागरे तरंगा एव यत्र इदम् विश्वम् सुफुर्ति साहम् अस्मि इति बग्याए धीना एव किम् धावसि। जिस प्रकार समुद्र के विषय तरंगे सुपुरे हैं अर्थात अभिन्न रूप हुए हैं इसी प्रकार जिस आत्मा के विषय जय विश्व अभिन्न रूप है वह निर्विशेष आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार साक्षात करके दीन पुरुष की समान मैं हूँ और मेरा है इत्यादि अवमान करके क्यों दौड़े हैं। ऊपर के तीन श्लोकों में शेष की व्यवहारा अवस्था की निंदा करी और संपूर्ण ही ज्ञानियों की व्यवहार अवस्था में स्थिति की निंदा करे हैं के शुद्ध चैतन्यम अति सुंदरम आत्मनम श्रुत्वा अपि उपस्थे अत्यंत संसक्तः आत्मवः मल्लनिमिम अधिगच्छति मालिनम मालिन्यम अधिगच्छति। गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों से अति सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को श्रवण करके तथा साक्षात करके तदनंतर समीपस्थ विषयों के विषय प्रीति करने वाला आत्मज्ञानी मालने कहिए सो टपने को प्राप्त होता है। मालने कहिए मूढ़पने को प्राप्त हो जाता है। फिर भी ज्ञानी के विषयों में प्रीति करने की निंदा करे हैं के सर्वभूतेषु च आत्मानं आत्मनि च सर्वभूतानि जानता मुने विशेषु ममत्व अनुवर्तते इति। इति आश्चर्यम् आश्चर्यम् ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण प्राणियों के विषय अधिष्ठान रूप करके आत्मा विद्यमान है और संपूर्ण प्राणी आत्मा के विषय अध्यस्त अर्थात कल्पित हैं। जिस प्रकार के रज्जु के विषय सर्प कल्पित हुए हैं इस प्रकार जानते हुए भी मुनि की विषयों के विषय ममता हुए हैं यह बड़ा ही आश्चर्य है, क्योंकि सीपी के विषय रजत को कल्पित जानकर भी ममता करना मूर्खता ही होती है। आत्मज्ञानी की विषयों के विषय प्रीति करने की निंदा करते हुए कहे हैं कि परम अद्वैतम आस्थिता तथा मोक्षार्थे व्यस्तता अपि कामवशरा अपि कामवशगा सन केली शिक्षा विकला इक्षते इति आश्चर्यम्। परम अद्वैत अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो ब्रह्म तिसका आश्रय और मोक्ष रूपी सच्चिदानंद स्वरूप के विषय विवाश करने वाला पुरुष कामवश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा को अभ्यास करके अर्थात नाना प्रकार के विषयों में लवलीन होकर विकल देखने में आवे हैं यह बड़ा ही आश्चर्य है। अब इस वार्ता का वर्णन करे हैं कि विवेकी पुरुषों को सर्वथा विषय वासना का त्याग करना चाहिए। अंतम कालम अनुश्रिता अति दुर्बला ज्ञानी ओदुतम ज्ञान दुर्मित्रम अब धारम धर्म अपि काम आकर्षते इति आश्चर्यम्। उद्भूत कई उत्पन्न होने वाला जो काम वह महाशत्रु ज्ञान को नष्ट करने वाला है ऐसा विचार करके भी अति दीन होकर ज्ञानी विषय भोग की आकांक्षा करे हैं यह बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है, क्योंकि जो पुरुष विषय वासना में लवलीन होता है वह काल ग्रास होता है अर्थात क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इस कारण ज्ञानी पुरुष को विषय तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। अब इस वार्ता का वर्णन करे हैं कि ज्ञानी पुरुष को विषयों का वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। एहे असूत्र ब्रह्मतस्या नित्यानित विवेकिना मोक्ष कामस्या मोक्षत एव विभीषिका भवतीति आश्चर्यम्। जिसको इस लोक और परलोक के सुख से वैराग हो गया है और आत्मनित है तथा जगत अनित है, इस प्रकार जिसको ज्ञान हुआ है और मोक्ष जो सच्चिदानंद की प्राप्ति तिसके विषय जिसकी अत्यंत अभिलाषा है, वह पुरुष भी बलवान दे आदि असत स्त्री पुत्र आदि के वियोग से भयभीत हुए है। यह बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है। स्वप्न में अनेक प्रकार के सुख देखने पर भी जागृत अवस्था में वह सुख नहीं रहे हैं, तो इन सुखों का कोई पुरुष शोक नहीं करे हैं। इसी प्रकार स्त्री पुत्र तानादि असत वस्तु का वियोग होने पर शोक करना योग्य नहीं है। अब इस वार्ता का वर्णन करें हैं कि ज्ञानी को शोक हर्ष नहीं करने चाहिए। तीरा तु लोके विषयान भोज्यमानः अपि निंदादीना पीड्यमानः अपि केवलम् आत्मानम् पश्यन् न तुष्यति न कुरुष्यति न कुष्यति। ज्ञानी पुरुषों को जगत के विषय कौन बान पुरुष नाना प्रकार के भोग कराए हैं, परंतु वैज्ञानी पुरुष इसमें हर्ष को नहीं प्राप्त हुए हैं और पापी पुरुष पीड़ा दे हैं तो उसको शोक नहीं करे हैं, क्योंकि यह ज्ञानी पुरुष जाने हैं कि आत्मा सुख दुख रहत है, अर्थात आत्मा को कदाप हर्क शोक नहीं हो सके हैं, और हर्क शोक के हेतु तो उसकी निंदा आदि सो तो शरीर के धर्म है और शरीर आत्मा से भिन्न है। फिर ज्ञानी को हर्क शोक किस प्रकार हो सके हैं, इस वार्ता का वर्णन करे हैं। जाचेष्टमानम स्वयं शरीरम अन्य शरीर बत पश्यति सह महाशह संस्त्वे अपि चा निंदायाम कथम कुशुम्येत। जो ज्ञानी पुरुष चेष्टा करने वाले अपने शरीर को अन्य पुरुष के शरीर की समान आत्मा से भिन्न देखे हैं, वह महाशय उस्तुति और निंदा के विषय किस प्रकार हर्क शोक क्षोभ को प्राप्त होएगा, अर्थात नहीं प्राप्त होएगा। जिसका मरण होए और जो बंद करे हैं यह दोनों अनित हैं, इस प्रकार जानने के कारण ज्ञानी को मृत्यु काल के समीप होने पर भी भय किस प्रकार हो सके हैं, इस वार्ता का वर्णन करे हैं। इदम् विश्वम् मायामात्रम् इति पश्यन् विगत कौतुकः धीरधी और मृत्यु सन्निहते अपि कथम् त्रत्यति त्रस्यति। यह दृश्यमान विश्व माया मात्र कहिए मिथ्या रूप है, इस प्रकार देखता हुआ इस कारण ही यह शरीर आदि विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ लीन होएगा, इस प्रकार विचार नहीं करने वाला ज्ञानी पुरुष मृत्यु के समीप जाने पर भी भयभीत नहीं हुए हैं। अब ज्ञानी का सर्व की अपेक्षा उत्कृष्टपना दिखाते हैं कि नैर्षे अपि यस्या मनसं निस्पृहं भवति तस्या आत्मज्ञान तृप्तस्या महात्मना केन सुमन तुलना जायते। मैं ब्रह्म रूप हूँ इस प्रकार ज्ञान होने पर जिसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, ऐसा जो महात्मा ज्ञानी पुरुष तिसका मन मोक्ष के विषय भी निराश होता है, अर्थात वह मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता है। ऐसे ज्ञानी की किससे तुलना करी जाए, अर्थात ज्ञानी के तुल कोई भी नहीं हुए है। ज्ञानी पुरुष को यह ग्रहण करने योग है या त्यागने योग है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस वार्ता का वर्णन करे हैं। स्वभावात एव इदम् दृशम किंचन न इति जानाति सा धीर्धि इदम् ग्रहजम् इदम् त्याज्यम् इति किम पश्यति। स्वभाव से ही अर्थात अपनी सत्ता करके ही जिस प्रकार सीपी के विषय रजत कल्पना मात्र हुए हैं, तीसरी प्रकार यह दृश्यमान द्वैत प्रपंच मिथ्या रूप है, जगत कल्पत है अर्थात सत है न असत, इस प्रकार जानने वाले ज्ञानी की बुद्धि धैर्य सम्पन्न हो जाए तो भी वह ज्ञानी यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है, यह वस्तु त्यागने योग्य है, इस प्रकार का व्यवहार क्यों करे है, यह बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष को कदापि यह वस्तु त्यागने के योग्य है, यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। उपरोक्त विषय में हेतु कहे हैं कि अंतः त्यक्त कुशायस्थ अस्या निर्द्वंद्वस्या निराशा जादृश्या आगता भोगा दुखाए न भक्ति तुष्टे तुष्टे या न भक्ति। अंतःकरण के राग द्वेष आदि कषायों को त्यागने वाले और शीत उष्ण द्वंद रहत तथा विष मात्र की इच्छा करके रहत जो ज्ञानी पुरुष इसको दैव गति से प्राप्त हुआ भोग ना दुखदायक हुए है और ना प्रसन्न करने वाला हुए हैं। अथ तुरियारणम इस प्रकार श्री गुरु ने शिष्य की परीक्षा लेने के निमित्त आक्षेप करे। अब तिसके उत्तर में शेष गुरु के प्रति इस प्रकार कहे हैं कि हंद भोग लीलिया खेलता आत्मग्स्या धीरस्या संसार वाही कह कह मूढ़े सहस मानता ना ही। ज्ञानी संपूर्ण व्यवहारों को मिथ्या जाने हैं और प्रारब्ध अनुकूल नाना प्रकार के जो भोग प्राप्त हुए हैं उनको आत्मविलास माने हैं। आनंद की वार्ता है कि जो आत्मज्ञानी है वह अपने आत्मा को संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जाने हैं, वही धैर्यवान है अर्थात उसका चित्त विषय में असक्त नहीं हुए हैं। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए विषयों की क्रीड़ा विखे रमण करने वाले तेस ज्ञानी की संसार के विषय देवमान करने वाले सुख करके तुल्यता नहीं हुए है। संसार विषय देवमान करने वाले मूर्खों करके तुल्यता नहीं हुए है। सोई गीता विषय श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेशु वृतंत इति मत्वा न सज्यते। अर्थात आत्मज्ञानी संपूर्ण व्यवहारों में रहे है परंतु किसी कार्य का अभिमान नहीं करे हैं, क्योंकि वह जाने हैं कि गुण गुणों के विषय बरते हैं, मेरी कोई हानि नहीं है, मैं तो साक्षी हूँ। तहां शंका हुए है कि संसारिक व्यवहारों का बर्ताव करने वाला ज्ञानी संसारी पुरुष तुल क्यों नहीं हुए हैं, तो इसका समाधान करे हैं कि अहो शुक्राद्य सर्वदेवता जत पदम प्रप्सव संतः दीनः वर्तन्ते तत्र स्थितिः योगी हर्षम न उपगश्यति। बड़े आश्चर्य की वार्ता है, हे गुरु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिस आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए आत्मपद की प्राप्ति न होने से दीनता को प्राप्त होते हैं, जिस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा पद के विषय स्थित अर्थात तत्व पदार्थ के एक ज्ञान से आत्मपद के विषय वर्तमान आत्मज्ञानी विषय भोग से सुख को नहीं प्राप्त हुए है और तिस विषय सुख का नाश होने पर शोक नहीं करे है। अब इस वर्णन अब यह वर्णन करे हैं कि आत्मा ज्ञानी पुरुष और पाप करके लिप्त नहीं हुए हैं। जथा ही आकाश अस्य धूमेन सह दृश्यमान अपि संगति न अस्ति तथा ही तत् तत् तत्वस्य पुन पाप विहाम अंतः स्पर्शा न जायते। तत्त्व पदार्थ की एकता को जानने वाले तत्व ज्ञानी को अंतःकरण के धर्म जो पुण्य पाप तीन से संबंध नहीं हुए हैं, यह वेदोक्त विधि निषेध के बंधन में नहीं हुए है, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके अंतःकरण में पाप उनका संबंध नहीं हुए हैं। जिस प्रकार धूम आकाश में जाए हैं परंतु उस धूम का आकाश से संबंध नहीं हुए हैं। गीता के विषय कहा है कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात्कुरुते तथा, अर्थात ज्ञानी ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दे हैं। तहां शंका हुए है कि ज्ञानी कर्म करे हैं और उसको पाप पुण्य का स्पर्श नहीं हुए हैं, यह कैसे हो सके हैं, इसका समाधान करे हैं कि जैन महात्मना इदम सर्वम जगत आत्मा एव इति ज्ञातम तम यदृश्या वर्तमानम का निषेधम क्षिमेत। जिस ज्ञानी महात्मा ने यह दृश्यमान संपूर्ण जगत आत्मा ही है। इस प्रकार जान लिया और सदंतर परारब्ध के वशीभूत होकर बरते हैं, उस ज्ञानी को कोई रोक नहीं सके हैं, अर्थात वेद वचन भी ज्ञानी को ना रोक सके हैं ना प्रवृत्त कर सके हैं, क्योंकि प्रबोधनीय एवासो सुनो राजेव बंधवी, अर्थात जिस प्रकार बंदी पाठ राजा के चरित्रों का वर्णन करे हैं, इसी प्रकार वेद भी आत्मा ज्ञानी का बखान करे हैं, शेष शंका करे हैं कि ज्ञानी अपनी इच्छा के अनुसार बरते हैं या दैव इच्छा से बरते हैं। इसका गुरु उत्तर दे हैं कि ही